ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जान की हमें तीन बार ओम शांति कहकर याद दिलाते हैं। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। और वास्तव में इन तीनों बातों में सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है। बाबा के घर में आप सभी पहुंचे हो, बाबा से वरदान झोली में भरने के लिए आए हो और विशेष रूप से इस ब्राह्मण जीवन में पल पल पर नवीनता अनुभव करने आए। तो जैसे ही हम बाबा के बने, वास्तव में बाबा कहा हमारा नया जन्म शुरू हुआ। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को पहचाना और उनकी श्रीमत पर फिर चलना आरंभ किया, तो हमारा जीवन ही बदल गया। हम कहेंगे पहले हम शूद्र थे, पहले हम कांटे थे। आज भी बाबा ने कहा कांटों की दुनिया है ये सारी। बाबा ने आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया, कांटे से फूल बनाया। तो जैसे ही हम बाबा के बने, बाबा ने हमें बहुत सुंदर गिफ्ट सौगाते हमें दी। कौन सी सौगाते दी? एक तो बाबा ने दिव्य बुद्धि की सौगात दी, जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दी होगी। वो स्थूल सौगाते तो बहुत एक दो को देते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि की सौगात ये भगवान ही हम बच्चों को दे सकता है। तो उसके पहले कौन सी बुद्धि थी हमारी? बाबा कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं, जैसे पत्थर बुद्धि थी। पत्थर बुद्धि माना आज बाबा ने कहा अहिल्या बुद्धि। जैसे कि श्रापित बुद्धि थी, अहिल्या को श्राप मिला था ना, पत्थर बन गई। तो किसने श्रापित किया था? रावण ने, माया ने, और उसके कारण पत्थर बुद्धि बन गई थी। सब कुछ उल्टे रूप में लेते थे। क्या समझते थे? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो नेचुरल है, ये तो स्वाभाविक है, इनके बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो रावण ने जो बुद्धि दी थी उससे पत्थर बुद्धि बन गई थी और हम सब माया रावण के मुरीद बन गए थे। तो जैसे ही शिव बाबा ने हमें यह पहचान दी कि आप एक आत्मा हो और मेरी संतान हो, बस ये सुनते ही समझते ही हमारा नया जन्म हो गया। ऐसे महसूस करते हो ना? हाँ, जिन्होंने ऐसे महसूस किया आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान लेकर, और सचमुच बाबा हाँ ये दिल से निकला और नया जन्म अनुभव किया, वो हाथ उठाएं। सभी अनुभव करेंगे, सभी कहेंगे। तो मानो उस समय हमको बाबा ने हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना दिया। हम जो पहले कांटे थे, एक दो को विकारों से चुभते थे, है ना, चुभते है ना, कांटे तो चुभते हैं, तो कितना दुख मिलता है। कांटा जब चुभता है तो कितना कष्ट होता है। तो एक एक विकार से कितना कष्ट होता था। हम खुद को भी कष्ट देते थे, दूसरों को भी कष्ट देते थे इन विकारों से। या बाबा कहते ये काम क्रोध दोनों हिंसा है। तो जब पत्थर बुद्धि थी तो हम क्या समझते थे, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उससे आत्मा का कितना हनन हुआ, आत्मा की शक्ति कितनी नष्ट हुई, वो हमें पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही दिव्य बुद्धि मिली, एक नया जीवन अनुभव किया, तो ये बातें सब समझ में आने लगी कि अरे अभी तक तो हम क्या सोचते थे, अभी तो भगवान ने तो हमारी बुद्धि बदल दी। जो हम सही समझते थे वो तो एकदम गलत था, और जो हम समझते थे ये गलत है वही सही था। क्योंकि हम यही समझते थे क्रोध तो करना ही पड़ता है, क्रोध नहीं करेंगे तो कोई हमको जिंदा ही नहीं रहेगा छोड़ेगा, लोभ तो रखना ही पड़ता है नहीं तो घर कैसे चलाएंगे, मोह तो होना ही चाहिए नहीं तो पालना कैसे करेंगे, अभिमान तो रखना ही चाहिए नहीं तो समाज में कैसे रहेंगे, काम विकार तो बहुत जरूरी है नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। इसलिए जो हमारी बुद्धि इतनी विपरीत बुद्धि बन गई थी, भगवान ने उस विपरीत बुद्धि को सीधा किया। तो मानो एक दूसरी गिफ्ट बाबा क्या देते हैं हमारे जन्मदिन पर, अभी जन्मदिन मनाएंगे ना, शिवरात्रि मना, हम सबका अलौकिक जन्मदिन। दूसरा बाबा कहते हैं आपको अलौकिक जन्म लेते ही तीसरा नेत्र दे दिया। इस तीसरे नेत्र से पहले हम क्या थे, बाबा कहते अंधे की औलाद अंधे, हाँ ऐसे ही थे ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि अंधे की औलाद अंधे। तीसरा नेत्र ज्ञान का बंद था और बाबा ने वो नेत्र खोल दिया, जिस नेत्र से हमने तीनों कालों को देखा, तीनों लोकों का अनुभव किया, भूत वर्तमान भविष्य हमारे आगे ऐसे स्पष्ट हो गया जैसे ये वर्तमान स्पष्ट है। तो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना दिया तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर। और अगर हम देखें, कल की मुरली बाबा की आप लोगों ने सुनी होगी, बाबा ने हमें तीसरा नेत्र क्या दिया, जगा दिया। जो हम अज्ञान नींद में सोए हुए थे, जगा दिया, आंख हमारी खोल दी। कहां कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, समझते थे कलयुग तो अभी बच्चा है, और बाबा ने आंख खोल दी, बच्चे कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग का तो बाकी थोड़ा समय बचा है, बच्चा नहीं है। अब इस थोड़े समय जो बचा है ना, उसमें आप ऐसा पुरुषार्थ करो जो आप सतयुगी नई दुनिया के मालिक बन जाओ। तो कहां हम माया के गुलाम थे, अपने इंद्रियों के गुलाम थे, अपने मन के भी अधीन थे, मन बेलगाम घोड़ा होके भटकता था, विकारों के वश होकर सबको दुख देते थे, और बाबा ने एकदम जीवन 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज बदल दिया, एकदम दूसरा जीवन बना दिया। जीवन कैसे हमारा बदल गया, कई बार लगता है कि पता ही नहीं चला। जैसे बचपन से जवानी आई, जवानी से प्रौढ़ अवस्था हुई, बुढ़ापा आया, कई लोग कहते कि तो पता ही नहीं चला। तो उस कलयुगी नरकमय दुनिया से हम कैसे संगम युगी सच्चे ब्राह्मण बन गए, कई बार तो कहते पता ही नहीं चला। जीवन कैसे बदल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि ये भी एक चमत्कार था। जो हम समझते थे असंभव है, वो बाबा की शक्ति से, बाबा की मदद से, बाबा की याद से वो सब संभव हो गया। जो हम समझते थे कि ये तो संसार ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चला आया है, तो जैसे ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तीनों कालों का दर्शन हो गया, लगने लगा कि अरे भगवान ने तो कितनी सुंदर दुनिया बनाई थी, और हम बच्चों को ही इतना श्रेष्ठ अधिकार दिया था। जहाँ तन हमारा निरोगी था, मन शक्तिशाली था, धन अखिचार था, संबंधों का कितना सुख था, प्रकृति पूरी सेवक बन करके सेवा करती रही, वो दुनिया भगवान ने हमारे लिए रची थी और हम उस हमको उसका मालिक बनाया था। लेकिन हमने कैसे गंवा दिया, आज सोच रहे हैं कैसे गंवा दिया, पता ही नहीं चला। कैसे धीरे 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 माया हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती गई करती गई करती गई, जो आज हम एकदम नरक में आ गए थे। फिर भी बाबा कहते हैं चलो जो हुआ ड्रामा, अब फिर से पुरुषार्थ करो, फिर से जागो। तो जैसे बाबा ने ये समझ दी, तो हमें महसूस हुआ कि अरे ये तो नया जन्म हो गया। फिर कई बार हम पीछे मुड़ के देखते हैं क्या थे और क्या बन गए, फिर क्या बनने वाले हैं, तो रोमांच खड़े हो जाते हैं, अरे क्या थे, क्या बने और क्या होने बनने वाले हैं। तो लगता कैसे हमारी तकदीर ही कितनी ऊंची हो गई। कहां हम अपनी तकदीर को कोसते थे, थोड़ी सी कुछ बात ही, हाय मेरी तकदीर, हाय मेरी तकदीर, यही कह के सिर पीटते थे, कोसते थे अपने आप को। अभी ये कभी मुख से नहीं निकलेगा। बाबा कहते हैं बदल गया, कैसे, हाय 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 के बजाय वाह 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 वाह, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, वाह 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 वाह। कुछ भी हो जाए हाय हाय नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हाय हाय नहीं, किसी ने कुछ भी कहा हाय हाय नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ हाय हाय नहीं, कोई कैसा भी व्यवहार करे हाय हाय नहीं, वाह वाह। क्यों वाह वाह, क्योंकि बुद्धि बदल गई, हमारी सोच ही बदल गई। पहले हमारी सोच कैसी थी, किसी ने कुछ कह दिया, कितने दिनों तक वो सोचते रहे, से क्यों कहा, ये कैसे कहा, इसको नहीं कहना चाहिए था, ये ठीक नहीं किया, न जाने क्या क्या सोचते थे। अभी क्या कहेंगे, बदल गई सोच, चलो जो कहा वो जाने, उसका कर्म वो जाने। वैसे मानते तो है ना, हर एक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है, तो उसका कर्म वो जाने, उसने जो किया उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों उसका दुख उठाएं, कुछ भी उसने किया कहां लगा मुझे। बाबा ने हमें योग का कवच दे दिया है, पहले हम कवचहीन थे तो सबके तीर लगते थे, इसने ये कहा, इसने वो कहा, उसने वो कहा, हाय हाय करते रहते थे। अभी बाबा ने योग का कवच दे दिया है ना, और ड्रामा की ढाल दे दी है, और ज्ञान की तलवार दे दी है, योद्धे बन गए। माया को ललकार करते आओ तो सही, हम आपको जरूर जीत सकेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की तलवार है, योग की ढाल, योग का कवच है और ड्रामा की ढाल है। ये तीन शस्त्र हमको माया से हर वक्त सुरक्षित रखेंगे। तो ये जैसे एक नया जीवन हमें मिल गया। आज भी बाबा ने वरदान में कहा, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता दुनिया में तो कितनी चिंताएं हैं, हर बात में चिंता ही चिंता, हमको कोई चिंता नहीं है। जिसको चिंता हो हाथ उठाए, कोई नहीं। देखो अपने लिए ताली बजाओ, कोई चिंता नहीं। क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। बस जो होगा अच्छा ही होगा।
शिव पिता में तुम आना है, शिव
बार बाबा ने क्लास में पूछा, मुरली के समय बाबा ने पूछा, बच्चे आप सभी त्रिकालदर्शी हो? तो सब ने हाथ उठाया, जी बाबा हम सब त्रिकालदर्शी हैं। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी हो माना, अच्छा बताओ कल क्या होगा आपको पता है? तो कहा बाबा वो तो पता नहीं कल क्या होगा, क्या जाने। बाबा ने कहा पर त्रिकालदर्शी कैसे हो, पता ही नहीं कल क्या होगा, तो कैसे कहेंगे त्रिकालदर्शी हो? तो बेचारे सब बूझ गए। बाबा ने कहा इसमें बूझने की क्या बात है, ये क्यों सोचते हो पता नहीं क्या होगा? पर क्या सोचो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये त्रिकालदर्शी स्थिति नहीं है क्या? है ना त्रिकालदर्शी स्थिति, क्योंकि ये पता है कि कुछ भी हो वो कल्याणकारी होगा। भले उस समय हमें पता नहीं चलता है कि ये कितना कल्याणकारी है, लेकिन वो कल्याणकारी होगा ही होगा, ये निश्चित है। इसीलिए गीता का यही सार है, जो हुआ क्या हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो कितना सुंदर ये विचार है, एकदम सोच ही नहीं है। भले हम सुनते थे, गीता का सार पढ़ते थे, जब तक बाबा का ज्ञान नहीं था बस खाली पढ़ते थे, लेकिन कभी उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाया कि चलो कोई बात हुई और उस समय कह दिया कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और अगर समझा भी और किसी को कह दिया कि जो हुआ अच्छा हुआ, बेगा क्या अच्छा हुआ, अब लड़ना चालू कर देंगे क्या अच्छा हुआ। तो इसलिए ऐसे बोलना भी नहीं है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना। लेकिन हम जानते हैं उसमें भी कोई राज था। चलो कल्याण शब्द न कहो, परंतु ये तो कह सकते ना, कोई राज है, कोई उसके अंदर कोई ऐसी गहराई है, उसका भविष्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए जैसे फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो कितनी एकदम कितनी सीन्स आती रहती है। तो कई बार होते ऐसे, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे आगे देखते जाते हैं तो पता चलता जाता है, राज खुलता जाता है, ये क्यों ऐसे कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे उसका वो विस्तार या वो खुलासा होता है, उस समय पता नहीं चलता है। इसलिए अंदर में हम यही सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, तो चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। परंतु उसके लिए निश्चय बहुत जरूरी है। किसमें निश्चय? ये एक नवीनता अपने अंदर भरनी है, अपने में निश्चय, खूब निश्चय चाहिए। ऐसे कई जो संशयात्मक बुद्धि होते ना, अपने लिए भी संशय, पता नहीं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, पता नहीं ठीक किया नहीं किया, पता नहीं अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ। तो पता नहीं अगर कहते हैं, माना ये संशय बुद्धि है। परंतु जैसे हम ये संकल्प करते हैं कि मैं कर सकती हूँ और जो हुआ अच्छा हुआ, चलो लगा कि भाई बिगड़ गया या कुछ भी, लेकिन कम से कम अनुभव तो मेरा बढ़ा। एक गलत निर्णय हमने ले लिया और कुछ बुरा हुआ भी, लेकिन एक अनुभव तो मेरा बढ़ा। ये अनुभव तो मैं दूसरे को बता सकूंगी कि ये मेरा अनुभव था, आप सावधान हो जाइए। मैंने आग में उंगली डाली, उंगली जल गई, अब इसमें अच्छाई क्या है? इसमें अच्छाई ये है कि अनुभव मुझे हुआ कि आग तो जलाती है, आग में उंगली नहीं डालनी चाहिए। लेकिन दूसरा एक बच्चा है, उसको पता नहीं है, और वो आग में उंगली डालेगा तो उनको तुरंत रोकेंगे, बेटा ये जलता है,
उसको तो पता ही नहीं।
तो अनुभवी हो गए ना हम, तो अनुभवी बन करके हम दूसरों को अनुभवी बना सकेंगे, ये एक नवीनता है। तो हर कदम पर एक नवीनता की अनुभूति हमें करनी होगी। किस किस में नवीनता? सबसे पहले हमारी सोच में नवीनता। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से हमारी हर सोच नवीन बन जाती है, नई सोच। पहले क्या सोचते थे? देह अभिमान में आने होने के कारण। और अभी हम क्या सोचते हैं? देही अभिमानी होने के कारण वो सोच में परिवर्तन आ जाता है। चलो कई बार सोच तक इतना नहीं जाते, पर कम से कम वचन और कर्म तक तो परिवर्तन आ सकता है। कई बार गलत कर्म करने जा रहे हैं जो श्रीमत के खिलाफ है, उसी समय कम से कम ये सोच आ जाए, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये श्रीमत के अनुकूल नहीं है, तुरंत हम अपने हाथों को रोक सकते हैं, उस गलत कर्म से बच जाएंगे। ये नवीनता अनुभव करनी है। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि ये गलत है, गलत कर्म कर लिया, गुस्सा कर लिया, लोभ के वश हो गए, झूठ बोल दिया, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, वैर, दुर्भावना, इन सब के वश होते गए होते गए होते गए, पता ही नहीं चला कैसे समय, श्वास, संकल्प शक्ति हमारी नष्ट होती गई, होती गई, होती गई, और एकदम शक्तिहीन हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे हमको बाबा ने समझ दी, पहले तो आत्मा की समझ दी, तो दृष्टि बदल गई। देह के बजाय आत्मा को देखो, देह को मत देखो। ये सांप के बजाय सांप के मस्तक पर जो मणि है उसको देखो। ये जैसे समझ मिली तो दृष्टि बदल गई, तो एक दृष्टि में नवीनता आ गई। कहां पहले देह में दृष्टि जाती थी, ये गोरा है, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, हाँ ये फलाना है, ये फलाना है, अब दृष्टि बदल गई, बदल गई ना सबकी दृष्टि। अब सबको किस रूप में देखना है? आत्मा है। तो धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश, ये सब जो दृष्टि पहले हद में थी, बाबा ने उस दृष्टि को ही बदल दिया, बेहद की बना दी। कितनी हदों में हम पड़े रहते थे, तेरे मेरे में पड़े रहते थे, अब तेरे मेरे से भी परे हो गए, बस यही बुद्धि में है, ये सब बाबा का है। तो कहां तेरा मेरा कहना, और कहां तू तू मैं कहना, और कहां कहना बाबा, ये सब आपका है। तो हमारी सोच ही बदल दी बाबा ने। अभी हम कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो पहले अंतर में आएगा कि ये जो मेरी सोच है, ये जो मेरे बोल में बोलने जा रही हूँ, ये जो मेरे कर्म में करने जा रही हूँ, ये बाबा समान है क्या? अगर बाबा इस समय होते, ब्रह्मा बाबा होते, तो ऐसे करते? अगर ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्य मिल गया, मुझे बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने का जितना ऊंचा लक्ष्य मिल गया, तो हम जरूर बाप को ही फॉलो करेंगे। हमें ये लक्ष्य मिल गया कि अभी हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बन रहे हैं, तो फरिश्ता कैसे चलते हैं, फरिश्ता कैसे बोलते हैं, फरिश्ता कैसे खाते हैं, फरिश्ता कैसे देखते हैं, वे फरिश्ता बन गया, बनना है, बनना, चलो बना नहीं हो, बनना है, पर अभी से ही उसकी प्रैक्टिस चाहिए ना, तभी तो बनेंगे। कल भी बाबा ने कहा, अभी हो ब्राह्मण, फिर बनेंगे फरिश्ता, फिर फरिश्ता के बाद क्या बनेंगे, घर जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे एकदम, फिर बिंदु बन करके फिर वापस आएंगे, फिर देवता बनेंगे। तो हमारे आगे कितने लक्ष्य है, बाप समान बनना, माना बाप समान पहले फरिश्ता बनना, फिर घर जाना है। बाबा कहते इस दृष्टि में एक आंख में मुक्ति रखो, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखो, घर जाना है, नई दुनिया में आना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। इस दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। आज भी देखो बाबा ने क्या कहा, हम जो कुछ कर रहे हैं वो नई दुनिया के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं। शिव बाबा बागवान है और हम बच्चों को बाबा ने माली बनाया है। पूरी दुनिया जंगल है, कांटों का जंगल है, एक दो को कांटे लगा रहे हैं, दुख दे रहे हैं। हमको बाबा ने, हम पर ज्ञान वर्षा करके हमको बदल दिया है बाबा ने। अभी कांटे से फूल बन रहे हैं और हम फूल बनकर दूसरों को फूल बनाए, क्योंकि बाबा अकेला थोड़ी जंगल को फूलों का बगीचा बना सकेगा, हम बच्चों का साथ चाहिए बाबा को। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब बिल्कुल जैसे हम बदल गए, एक नवीकरण आ गया, सोच में परिवर्तन। इसलिए कई लोग हमें कहते हैं ना, आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों को कोई जादू लग गया। तो सचमुच जादू क्यों नहीं है, कहां कांटे थे हम और कांटे से बाबा ने हमें फूल बना दिया, तो परिवर्तन हुआ तो जादू ही हुआ ना। जादूगर क्या करते हैं, क्या करते जादूगर, हाँ एक छोटा मोटा कुछ लिया, उसको ऐसे ऐसे करके एक फूल बना देते हैं, हाँ ऐसे ऐसे कुछ किया एक कबूतर निकाल देते हैं, तो है कुछ भी नहीं, और ऐसे ऐसे बस छड़ी घुमाई और कुछ निकल आया, तो बिल्कुल कुछ नहीं और उसमें से क्या निकल आया, ये जादू ही तो है। हम क्या अपने आप को पहले समझते थे, या तो बहुत समझते थे मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, होशियार भी मैं सबसे ज्यादा, सब 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 मैं एकदम ऊपर, और या तो समझे मैं तो एकदम हीन, एकदम हीन, एकदम नीचे, या तो मैं सब कुछ या तो मैं कुछ भी नहीं, ऐसे। अब बाबा कहते हैं मैं सब कुछ नहीं हूँ, सब कुछ अगर है तो बाबा है, और पर कुछ भी नहीं हूँ ऐसे भी नहीं हूँ, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, छोटे मोटे पिता के बच्चे थोड़ी है, तो हम थोड़ी कहेंगे हम कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो कुछ भी नहीं ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हम, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, इसलिए कुछ भी नहीं ऐसे बात भी नहीं, और मैं सब कुछ ऐसे भी नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा तो परमात्मा है। पर हाँ, मैं सब कुछ नहीं हूँ, परंतु मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये है नशा, सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं शब्द कहना ये भी देहाभिमान है, मेरे से तो नहीं होगा ये देहाभिमान है, और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ ये भी देहाभिमान है। इसीलिए बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है उसके आधार से सोच ही सारी बदल गई। दुनिया में एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स, हाँ एक तरफ या तो बिल्कुल भौतिकवादी, खाओ पियो मौज करो, शराब जुआ न जाने क्या क्या, इतना देह की इंद्रियों के में फंसे हुए हैं, तो एकदम भौतिकवाद, और कहां तो देखो एकदम सन्यासी, सब माया 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 कह करके एकदम समझते हैं इनसे हमारा किनारा है। पर बाबा ने माया का भी अर्थ बता दिया, क्या माया समझते थे और सचमुच माया क्या है। तो हम इस दुनिया के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे, पता है ये दुनिया अभी गई की गई, यहाँ कहीं भी रग नहीं जुटानी है, यहाँ पर हमें कोई बैंक बैलेंस इतना जमा नहीं करना है जो हमारी पीढ़ी के पीढ़ी पीछे खाती रहेगी, जरूरत नहीं है। हाँ, कई लोग सोचते ना मेरी 7 पीढ़ियां खाएगी, अरे 7 पीढ़ियां क्या खाएगी, आपकी अगली पीढ़ी आपने जो जमा किया वो एक साल में उड़ा सकती है, एक 7 पीढ़ी क्या खाएगी। है ऐसे लोग, तो बाप ने तो इतना जमा किया, सोचा मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे पोते खाएंगे, मेरे फलाने खाएंगे, और बच्चे को जैसे ही मिला एक साल में उड़ा दिया। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये भी नहीं सोचो कि इस कलयुगी दुनिया के लिए हमें कुछ और करना है। अगर बाबा कहते हैं धन तो सेवा में लगाओ, अनेकों की दुआएं लो, अनेकों का कल्याण करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी वो समय नहीं है कि बुढ़ापे में ही शरीर छोड़ेंगे, नहीं नहीं। हाँ, ये जरूर लक्ष्य हम रखते हैं कि आयु ज्यादा जिए तो हम और कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर शरीर छूटा तो पुरुषार्थ अगले जन्म में तो क्या करेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में सुनाया, हम जितना इस समय जीते रहेंगे उतना अंदर का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हम सच्ची कमाई करके जाएंगे, नहीं तो हाथ खाली जाएंगे। बाबा ने 2 दिन पहले बहुत अच्छी बात एक मुरली की है, आपको याद होगी। बाबा ने कहा कि मरना किसको कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या कहा जाता है, हाथ खाली आया था, हाथ खाली गया, क्योंकि इस संसार में जो कुछ जमा किया वो सब यहीं रह गया, एक सुई भी साथ में नहीं ले गया, हाथ खाली गया। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए ये नहीं कहेंगे हाथ खाली गया, सतयुग के देवताओं के लिए नहीं कहेंगे हाथ खाली गया, उनके लिए नहीं कहेंगे ये मर गया, क्योंकि मरना माना हाथ खाली जाना, ये दुख की बात है, हाथ खाली गया। लेकिन जो बाबा के बच्चे बनते वो अपना सब सफल करते हैं, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प शक्ति सब सफल करते हैं, तो वो हाथ खाली कभी नहीं जाएंगे, वो पुण्य की पूंजी साथ ले जाएंगे। तो उनके लिए मरना शब्द नहीं कहेंगे, क्या शब्द यूज करेंगे, क्या शब्द यूज करेंगे, देह त्यागा, देह त्याग। सतयुग में मरना शब्द है ही नहीं, देह त्याग, और वो देह त्याग भी स्वेच्छा से देह त्याग, जैसे पहले से ही पता बस अभी ये पुराना चोला छोड़ना है और नए चोले का साक्षात्कार हो जाता है, और बस नया चोला ले लेंगे, ये पुरानी चमड़ी यहाँ ही छोड़ देंगे, उसको मृत्यु नहीं कहते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, हाथ खाली नहीं जाएंगे, पुण्य की पूंजी साथ में ले जाएंगे, और वही संस्कार बन करके हमारे साथ आगे आएंगे, और वो संस्कार हमको ऐसे श्रेष्ठ देवता बना देंगे। तो जब ये हमारी सोच ही बाबा ने बदल दी तो ऑटोमेटिकली जीवन ही बदल गया। इसलिए सोच बदली, फिर वाणी भी बदली। बाबा हर मुरली में कुछ न कुछ जरूर कहेंगे, बच्चे अगर कोई गुस्सा करे आप गुस्सा मत करो, या तो वहां से चले जाओ या तो शांत रहो, क्योंकि अगर आपने भी कुछ गुस्सा किया तो आग में तेल डालने के बराबर होगा। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ, गुस्सा करके समझा रहा हूँ, वो जब गुस्से में होगा उस समय कुछ भी वो समझेगा नहीं, तो आप क्यों अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हो उस समय। इसलिए जितना आप शांत रह करके उसको शांति के वाइब्रेशंस देंगे उतना वो धीरे धीरे शांत अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक हाथ है हिलाया पर दूसरा हाथ उसको मिले ही नहीं तो ताली बजेगी नहीं। अब ये कितनी बड़ी समझ है ये, लेकिन कलयुगी दुनिया में कहाँ ये समझते हैं? वो तो यही कहेंगे ना, उसने ये कहा तुमने सामने जवाब क्यों नहीं दिया, तुमको भी सामने जवाब देना चाहिए था, नहीं तो वो समझेंगे हाँ तुम्हारी ये भूल है। लेकिन उस समय कहने से कुछ नहीं होता है और ये बात बढ़ जाती है, क्योंकि एक बात हमने कही फिर उसने दो बात कही फिर मैंने चार बात कही उसने आठ बात कही, न जाने वो पुरानी पुरानी बातें क्या निकल आएगी, जैसे मुर्दों को उखाड़ना चालू हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कितनी बातें फैल जाएगी जबकि जरूरत ही नहीं है उसकी, वो तो पूरा हुआ। कहते ना रात गई बात गई, लेकिन वो रात गई बात गई ये तो हम भूल जाते हैं, और जो 100 बातें पुरानी वो भी बाहर आ जाती है और न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, जरूरत ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बिंदु बन जाओ, बस बिंदु। तो पहले हम कहाँ ये सब जानते थे कि बिंदु बनना है, अभी बाबा कहते हैं बस इस दृष्टि में मुक्ति और जीवन मुक्ति याद करो। इस दुनिया के लिए सफलता क्या है, दुनिया में तो सफलता के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, धन से संपन्न हो जाना, नाम मान शान मर्तबा महिमा, यही सफलता है। और बाबा कहते ये सब सफलता है ही नहीं, क्योंकि आज है कल आत्मा उड़ गई, प्राण पखेरु उड़ गया, पंछी उड़ गया, सब यहीं का यहीं रह गया, कुछ भी नहीं गया साथ। लेकिन सच्ची सफलता तो यही है जो हम भविष्य के लिए अपना सारी पूंजी जमा कर रहे हैं, वो जो आत्मा के साथ जाएगी पूंजी, यहाँ ये पूंजी साथ नहीं जाएगी। और चलो हमारे काम नहीं आए दूसरे के काम आएगी, पर दूसरे के भी काम नहीं आएगी, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। तो क्यों नहीं हम आगे की कमाई करें? मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले एक भाई हमारे पास आए थे, वो बड़े ब्रिगेडियर है वो आर्मी में, तो अनुभव सुना रहे थे। उनकी वाइफ ज्ञान में चल रही थी, वो तो कहते वो तो बॉर्डर पर रहता था तो बहुत बिजी रहता था, तो पीछे से उसकी पत्नी ज्ञान में चलने लगी। और जब घर आया देखा तो मेरी पत्नी एकदम बदल गई है, सवेरे 3 बजे उठती है, नहीं तो कभी 7 बजे उठने वाली, और ये तो 3 बजे उठ रही है, और एकदम जो इतना थोड़ा बोतना बोलती रहती थी वो शांत हो गई है। जब देखो वो योग में बैठी है, सब कुछ करते फिर योग में बैठती है, तो कहता है मैं तो आश्चर्य खाने लगा, इसको क्या हो गया है, जैसे कैसे बदल गई है। लेकिन उसका जीवन एकदम बदल गया, मैं कितना कुछ भी बोलो तो वो शांत रहती थी, नहीं तो पहले कितना गुस्सा करती थी, बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बदल गई। मैं तो हैरान हो गया, और वो अंदर ही अंदर जैसे तपस्या कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तपस्या कर रही थी। तो सब कुछ ऐसे नहीं काम नहीं करती थी, सब कुछ करके पर तपस्या करती थी, और यही कहती थी मैं अपने अंदर प्रयोग कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ। इसलिए वो पति भी कुछ नहीं कहता था, भाई रिस्पेक्ट तो था ही। और फिर अचानक एक दिन वो गाड़ी में जा रही थी तो बिल्कुल जैसे ट्रक उनके ऊपर आ गई गाड़ी पर, और वहीं की वहीं एक सेकंड में खत्म हो गई, मतलब शरीर छोड़ दिया। अब उसके शरीर पर कुछ भी दाग नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ शायद कह रहा था कि ब्रेन में लगा होगा, ब्रेन इंजरी हुई और वहीं एकदम शांत, बाकी कुछ भी नहीं, एक सेकंड में आत्मा उड़ गई। तो उसको बहुत चिंता हो गई कि मैंने सोच में पड़ गया कि ये तो इतनी अच्छी, तो बहुत ज्ञान लेती थी, ये तो क्या नहीं करती थी, इतनी तपस्या करती थी, क्योंकि वो आया था उनका भोग लगाने के लिए। तो कहा कि इसके पीछे राज क्या है, तो हमने उनको यही कहा कि हो सकता है उस आत्मा को आभास हो रहा था कि अभी मैं बहुत समय नहीं रहूंगी, जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, इसलिए अपना उसने अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सब कुछ जैसे पुण्य के खाते में जमा किया, पुण्य का खाता जमा किया और बिल्कुल अपना सब कुछ सफल करती गई, करती गई, करती गई, करती गई, और जब बिल्कुल जैसे स्वच्छ, साफ, शुद्ध, पवित्र हो गई, बाबा ने बुला लिया, एक सेकंड उसको पता भी नहीं चला। तो कहा कि पर एक्सीडेंट, ये तो एक बहाना होता है एक्सीडेंट, उस आत्मा को जाना था तो एक्सीडेंट तो एक बहाना हो जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिए, ये मत दुख कीजिए कि ऐसे क्यों हुआ, पर आप ये सोचिए कि उसका भाग्य बहुत ऊंचा है और थोड़े से समय में उसने अपना भविष्य बहुत बना लिया, भाग्य बना लिया। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि वो पुण्य की पूंजी जमा करके गई है और सचमुच उसने भोग लगाया, और बाबा ने भी यही उनको संदेश दिया कि बच्चे वो बाबा के पास है, आपको बिल्कुल सोच चिंता की जरूरत नहीं, बाबा उनको ऐसे स्थान पर भेजेगा जहाँ वो बहुत सेवा कर सकेगी। अब आप देखिए, कोई सोचेगा अरे वो तो बाबा की बनी और बाबा ने उसको बचाया नहीं, लेकिन उसके पीछे उसका कितना भाग्य जमा है वो तो उस समय तो कोई भी नहीं देख सकता है, लेकिन उसको पहले से आभास हो गया कि मेरा हिसाब किताब इतना ही है, यहाँ इतना ही है, अन्यारी होती गई, होती गई, होती गई और एक सेकंड में उड़ गई। फिर उसके बाद वो भाई भी, उसका हस्बैंड ब्रिगेडियर बहुत बड़ा आर्मी में, और उसको भी जैसे मधुबन में आया, नहीं तो कभी नहीं मधुबन में आया था, वो आती थी पर वो कभी नहीं आया, लेकिन वो खास आया भोग लगाने के लिए। और उसके बाद अभी सुना कि वो सेंटर पर जा करके, क्योंकि उसको कहा कोर्स कीजिए, आपका भी जीवन ऐसे ही सफल हो जाएगा, और सुना कि वो जा करके कोर्स कर रहा है। तो मानो वो आत्मा उसको भी अभी, भले वो जहाँ भी जाएगी सेवा करेगी, लेकिन इस आत्मा का भी उत्थान कर लिया। तो आप सोचिए कि हमको कैसे अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, अपने बोल में परिवर्तन लाना है, अपने कर्मों में परिवर्तन लाना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, यही नवीनता है। अगर ये नवीनता नहीं है तो बाबा कहते ब्राह्मण भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण माना ही नवीकरण, ब्राह्मण माना ही नया जीवन, भले शरीर वही है पर नया जीवन बन गया। कई भाई बहने जब नया जीवन की बात आती है तो कई बार भाई बहनों के अंदर में चलता है कि मैं तो बहुत बदल गया बहन जी, मैं तो बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, पहले मैं शराब पीता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं जुआ खेलता था, बहुत मेरी बुरी आदतें थी बहन जी, मैं तो बहुत बदल गया हूँ। पर फिर बाबा उसमें भी खुश नहीं होते, बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ कह करके खुश मत हो जाओ। क्यों क्यों खुश मत हो जाओ? क्योंकि कितना तक बदलना है, कितने तक बदलना है, यहाँ ताकि यहाँ से हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाए, फरिश्ता सो बिंदु बन जाए, बिंदु से फिर देवता बन जाए, इतने तक बदलना है। उसकी भेंट में तो कहाँ कुछ बदले, अभी तक कर्मों का बहुत हिसाब किताब बाकी है। हमको किससे भेंट करनी है? जीरो से भेंट नहीं करनी है। मैं बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, माना जैसे जीरो से भेंट कर रहे हैं, एकदम शूद्रपना था, अभी ब्राह्मण बने हैं, परिवर्तन हुआ है और खुश हो गए, मेरे अंदर तो बहुत परिवर्तन आ गया है। लेकिन इतना परिवर्तन आए, इतना परिवर्तन आए, जो आत्मा अगर इस समय शरीर छोड़े भी, कितना ऊंचा भाग्य पुण्य की कमाई इतनी जमा करके जाए, और कमाई करके चलो गई भी तो आगे भी उसका इतना सुंदर जीवन हो, जो जहां जाए वो सेवा ही करे, सेवा ही करे, क्योंकि किसी का भी कुछ भरोसा नहीं आजकल, कुछ भरोसा नहीं। सवेरे घर से निकले, शाम तक घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे ये भी पता नहीं। मुझे याद है एक बार मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें? तो मम्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वक्त सोचो मेरी अंतिम घड़ी है, हर वक्त सोचो मेरी अंतिम घड़ी है। तो कैसा हो जाएगा पुरुषार्थ, कैसा हो जाएगा, कितना तीव्र हो जाएगा? हर वक्त मेरी अंतिम घड़ी है, बाबा मैं आ रहा हूं। तो क्या प्रैक्टिस हमारी होती रहे, एक सेकंड में अशरीरी बन जाना। मैं आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ, कैसे बाबा ने सेवा करानी होगी तो बच गए, नहीं तो पता नहीं किस जन्म में होते। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हमारा हुआ, बहुत बड़ा, और बिल्कुल बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब इस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो एकदम चिक गई एकदम। लेकिन उसी समय हमको जैसे बाबा की याद ना, बाबा की याद तो थी, और उस समय मैंने बाबा को कहा, जैसे एक्सीडेंट हुआ, बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास, ऐसे कहा। और एकदम अशरीरी हो गई, एकदम अशरीरी, और भी थे साथ में, लेकिन कैसे बाबा ने रक्षा की, एकदम अशरीरी हो गई, और ऐसे महसूस हुआ जैसे बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया। नहीं तो वो गाड़ी जो थी, या तो कैसे वो गाड़ी, या तो वो पिलर था, या तो वो पिलर से जाकर के टकराती, या तो एक खाई थी, या तो खाई में जाकर के गिरनी थी, मतलब ऐसे पलट गई, या तो खाई में गिरती या तो पिलर से टकराती। अब पिलर से टकराती तो भी पता नहीं क्या होता, और खाई में गिरती तो भी पता नहीं क्या होता। तो उस समय जैसे मैंने, जब हम वो पलटी तो मैं साइड में बैठी थी, और मेरे बीच में वो पतली सी थी बहन, तो वो तो गाड़ी के नीचे चली गई अंदर ही, और जो उस तरह बैठी थी बहुत मोटी थी, वो मेरे ऊपर ही आकर के गिरी। और उसी समय जैसे एकदम अशरीरी हो गई बिल्कुल, और फिर महसूस हुआ, फिर क्या हुआ कि न वो पिलर से लगी, न वो खंबे से लगी, न खाई से लगी, लेकिन वहां पर कोई झाड़ियां थी, और वो झाड़ियों में जाकर के सो गई गाड़ी। वो पहिया निकल आया, एक्सल टूट गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, इतनी आवाज हुई, और वो गाड़ी धीरे 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 जा करके वो झाड़ियों में ऐसे धीरे धीरे, जैसे कि बिल्कुल बाबा ने गोद में उठा लिया। और फिर जब आंखें खुली, देखा हम तो सब जिंदा है, हम सब जिंदा है, ऐसा अनुभव हुआ। आगे के शीशे टूट गए, कोई व्यक्ति को बचाने के लिए गए थे, सोचा साइड में जाए, तो साइड में तो क्या हुआ, पर वो जो व्यक्ति था उसका पैर आ गया व्हील के नीचे, और वो तो गिर गया। और ये ट्राइबल लोट होते ना, जो ये पेज, ये क्या, जंगल के झाड़िया, वो सूखी पेड़, वो दटेलिया, वो उठाकर सिर पर ले जाते हैं, तो वो कोई बीच में आ गया, तो उसका जो लकड़ियों का जो बंडल था वो हवा में उछला, और वो खिड़की पर लगा, खिड़की चूर चूर हो गई आगे की, और इसने बचाने की कोशिश की, और ऐसे पलट गई, वो व्यक्ति गिर गया, पता नहीं क्या, लेकिन बाबा ने कैसे रक्षा की। तो उस समय वो व्यक्ति तो बेहोश हो गया, गिर गया, क्योंकि उसको भी लगा तो होगा, और परंतु बाद में तो पता नहीं क्या, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बाबा ने कैसे हम सब की रक्षा की, और हम सबको गोद में उठा लिया। पर वो जो अनुभव था बिल्कुल अशरीरी बनने का, जैसे ये देह से आत्मा न्यारी हो गई, उड़ गई, ये अनुभव था। तो ये अनुभव हम अशरीरी अवस्था में कर सकते हैं, नहीं तो कितना लोग चिल्लाते हैं, क्या नहीं रोते हैं, क्या नहीं होता है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सुरक्षित रखा। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा हमारी सोच कैसे बदल देते हैं, दृष्टि बदल देते हैं, व्यवहार बदल देते हैं, एक नवीकरण हर वक्त अपने अंदर में लाओ, तब ये ब्राह्मण जीवन हमारा सचमुच सफल होगा, और ब्राह्मण जन्म के बाद वो फरिश्ता जीवन जन्म फिर घर जाएंगे फिर देवता बनेंगे वो तो निश्चित होगा ही, क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म हमारा श्रेष्ठ सफल हो गया। इसीलिए न कोई चिंता करने की बात है, न कोई दुख उठाने की बात है, और न ही कोई डरने की बात है, न ही कोई प्रश्न पूछने की बात है, न ही किसी बात में आश्चर्य करने की बात है। इन पांच बातों से बाबा ने हमको दूर रखा है। इतना निश्चय हो तो न प्रश्न करो, न आश्चर्य खाओ कोई भी बात सुनकर देखकर, न ही किसी का किसका दुख उठाओ, न ही अंदर में कोई डर पैदा हो और न ही चिंता करो। आज तो बाबा ने देखो क्या बड़ी बात कह दी मुरली में, सवेरे 4 बजे कैसे उठ के, मैं आपको बाबा ने आज मुरली में कहा ना, सवेरे सवेरे आप क्लास में आ सकते हो, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई क्या करेगा आपको, आप बाबा की याद में चलो 5 माइल पैदल भी चल सकते हो। तो एक बहन का अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। उस बहन ने बाबा की मुरली में ये सुना तो बड़ा नशा चढ़ गया, तो सवेरे अमृत वेले 4 बजे तैयार होकर के सेंटर पर आने के लिए रास्ते पर गई। अब 4 बजे था, अंधेरा था, लेकिन और बैज वैज पहन करके अच्छी तरह से नहा धो करके तैयार होके अमृत वेला करने सेंटर पर जा रही थी। बाबा के मुरली में था, बच्चे कुछ नहीं होगा। अचानक एक चोर आ गया, अब उसको बंदूक दिखाया, उसको कहा ये क्या पड़ा है, क्योंकि बैज पड़ा था वो गोल्डन बैज जैसा लगा उसको, या क्या ये क्या है ये निकालो। अब कहती है मैं तो बाबा की नशे में थी, तो वो कहीं निकालो और मैं उसको बाबा का ज्ञान देना शुरू कर दिया। बैज पर ही बाबा का ज्ञान देना शुरू कर दिया सवेरे 4 बजे कि देखो तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, ये शिव बाबा है, परमात्मा है, ज्योति बिंदु है, अभी घर जाना है, अभी परमात्मा को याद करना है। और सचमुच वो भाई जो था, वो जिसने उसको कहा था निकालो, सब पैची था और तो कुछ सोना वोना तो कुछ उसको था ही नहीं, लेकिन वो व्यक्ति इतना इनसे जैसे घबरा गया, उसको लाइट 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 दिखाई दी और हाथ जोड़ के कहता अच्छा माता जी जाओ आज की मुरली जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे याद आया जगदीश भाई का एक अनुभव। जगदीश भाई उस समय 1952 की बात है, जब वो पहले पहले नए नए ज्ञान में आए, तो उन्होंने दिल्ली कमला नगर से ज्ञान लिया और वो रहते थे सोनीपत में, काफी दूर था। तो मुरली में था कि रोज मुरली में क्लास में आना है। अब रोज कैसे आए, काफी दूर रहता था। आज बाबा ने कहा ना इतना थोड़ा सा 10 मील दूर है रहते हैं। अब कहते बाबा मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, मैं कैसे आऊँ, बाबा इतना दूर से आता है तुम नहीं आ सकते हो। हाँ बाबा की आज मुरली में था। तो जगदीश भाई ने ये बात मुरली में सुनी तो सवेरे 2 बजे उठ करके वो कैसे सेंट पर आता था, कहाँ सोनीपत और कहाँ दिल्ली कमला नगर, 2 बजे उठ के आता था। और इतना उसको नशा चढ़ गया, बाबा ने कहा है तो मैं करके दिखाऊंगा, यानी इतनी नशे की बात थी। देखो जगदीश भाई हमारे वरिष्ठ भाई कितना अनन्य रत्न, कैसे कितना आगे गए, कितने वरदानों की झोली भरी बाबा ने उनकी, उनका जीवन कितना सफल हो गया। बस एक लगन थी, उस लगन के सिवा और कुछ नहीं था उनकी बुद्धि में। तो इसी लगन में मगन अवस्था से कैसे हम आगे बढ़ते और अपना जीवन सफल करते, तो हमेशा हर वक्त यही सोचो ये नया जीवन मिला है, पुराना जीवन को बिंदु लगा दो, बीती बातों को भूल जाओ, अच्छा हुआ जो कुछ था और आगे बहुत अच्छा होगा, बस मुझे और कुछ नहीं सोचना, अपना सब सफल करते जाना। एक घड़ी भी हमारी व्यर्थ न जाए, एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ न जाए, एक पाई भी व्यर्थ न जाए, सब सफल हो यही सोच करके आगे बढ़ते जाना है और अपना जीवन नए से नया अनुभव करते जाना है। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।